नीचे ड्राइंग रूम की हलचल धीरे धीरे थम चुकी थी। हवेली के पुराने हिस्से में, जहां दीवारों पर बड़े बड़े तेल चित्र टंगे थे और छत से झूमर की हल्की पीली रोशनी गिरती थी, वहीं एक कमरा था सुषमा देवी का। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अगरबत्ती की हल्की सुगंध थी। पलंग के सिरहाने तकियों का सहारा लेकर सुषमा देवी बैठी थीं। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां जरूर डाल दी थीं, लेकिन आंखों की धार अब भी तेज थी, जैसे किसी की नीयत तक पढ़ लें। उनके सामने कुर्सी खींचकर श्यामली बैठी थी, गोद में भगवद गीता खुली हुई थी। उसकी आवाज स्थिर थी, स्पष्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कमरे में शांति थी, बस उसके शब्दों की गूंज। दो श्लोक पढ़ने के बाद ही सुषमा देवी ने हाथ उठा दिया। रुको, श्यामली ने पन्ने पर उंगली रोक दी। जी मौसी। इतनी जल्दी किस बात की है, आवाज में डांट थी। पाठ कर रही हो या ट्रेन पकड़नी है, शब्दों को महसूस करो, ऐसे भागोगी तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। श्यामली ने तुरंत सिर झुका लिया। माफ कीजिए, मैं धीरे पढ़ती हूँ। उसने फिर से वही श्लोक शुरू किया, इस बार हर शब्द पर ठहर कर। लेकिन सुषमा देवी की निगाहें किताब पर नहीं थीं, वो श्यामली के चेहरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई और संवाद चल रहा था। बहुत जल्दी है तुम्हें, सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर में जगह, अपनापन और शायद कुछ और भी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उनके होठों पर हल्की सी तिरछी रेखा उभरी। तुम्हें लगता है मैं बूढ़ी हूँ, कुछ समझती नहीं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ मैं। श्यामली को महसूस हुआ कि सुषमा देवी की निगाहें उस पर टिकी हैं। उसने एक पल को नज़र उठाई, फिर तुरंत झुका ली। पाठ खत्म होने तक कमरे का माहौल अजीब सा भारी हो चुका था। हो गया, सुषमा देवी ने पूछा। जी। इतनी देर से आई हो आज, सुषमा देवी ने तकिए का सहारा बदलते हुए कहा, और जाने की जल्दी भी दिख रही है। नहीं मौसी जी, मैं तो चलो, उन्होंने बीच में ही काट दिया। जाने से पहले मेरे पैरों में तेल लगा दो, आज बहुत दर्द है। एक पल को श्यामली की आंखों में थकान की रेखा उभरी, लेकिन अगले ही सेकंड वो सामान्य हो गई। जी, वो नीचे फर्श पर बैठ गई, तेल की छोटी शीशी खोली और बहुत धीरे धीरे उनके पैरों पर मालिश करने लगी। सुषमा देवी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वो पूरी तरह जागरूक हैं। जोर से, उन्होंने कहा, हाथों में ताकत नहीं है क्या? श्यामली ने दबाव थोड़ा बढ़ाया। ये बड़ी बूढ़ी है, उसके मन में एक क्षण को ख्याल आया, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं मानना कभी, लेकिन चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। आजकल तुम बहुत इधर उधर रहती हो, सुषमा देवी ने यूं ही कहा, कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत फुर्सत है तुम्हें। मैं तो बस घर का काम देख लेती हूँ, श्यामली ने संयम से जवाब दिया। काम? सुषमा देवी ने हल्की हंसी हंसी। या किसी और की फिक्र? श्यामली के हाथ एक पल को रुक गए। मौसी जी, मैं समझी नहीं। समझना चाहो तो सब समझ आता है, उन्होंने आंखें खोलकर सीधे उसे देखा। ये घर मेरा है, यहाँ किसकी नज़र कहाँ जाती है सब दिखता है। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। श्यामली ने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज? सुषमा देवी ने शब्द दोहराया। फर्ज की सीमा होती है, उसे लांघोगी तो परेशानी होगी, वो साफ चेतावनी थी। मालिश खत्म हुई तो श्यामली उठने लगी। बैठो, सुषमा देवी ने फिर रोका। इतनी जल्दी क्या है? मौसी जी, नीचे खाना देखना था। खाना नौकर देख लेंगे, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें कहीं और जाना है क्या? श्यामली ने चुपचाप फिर से बैठना बेहतर समझा। दरवाजे के बाहर गलियारे ने हल्की आहट हुई। अदिति सीढ़ियों से उतरकर पानी लेने आई थी। उसे सुषमा देवी के कमरे से आती आवाजें सुनाई दी तो कदम अनजाने में वहीं ठहर गए। दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा, श्यामली फर्श पर बैठी है सिर झुकाए, और दादी उसे लगातार टोक रही हैं। आजकल बहुत सजने लगी हो, सुषमा देवी कह रही थी, घर में रहकर इतना श्रृंगार किसके लिए? अदिति का दिल थक से हुआ। श्यामली ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो हमेशा की तरह ही। मुझे जवाब मत दो, सुषमा देवी ने सख्ती से कहा, मैं सब देखती हूँ। अदिति कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में अजीब सा मिश्रण उठा, हैरानी और हल्की सी राहत। तो बड़ी दादी उसे पसंद नहीं करती? ये ख्याल आते ही उसके भीतर एक छोटी सी संतुष्टि चमकी। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जो असहज होती हूँ उसके आसपास। अंदर फिर सुषमा देवी की आवाज आई, जाओ अब, लेकिन याद रखना, इस घर में हर कदम सोच समझ कर रखना। श्यामली ने चुपचाप सिर झुकाया और बाहर निकलने लगी। अदिति तुरंत सीढ़ियों की ओर मुड़ गई ताकि उसे लगे नहीं कि वो सुन रही थी। दोनों की नजरें एक पल को टकराईं। श्यामली की आंखों में थकान थी और कहीं गहराई में दबा हुआ आहत अभिमान। अदिति ने हल्की सी औपचारिक मुस्कान दी और बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। आखिर बड़ी दादी उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? वो सोच में डूब गई। दादी आमतौर पर सबके सामने सख्त रहती थी, लेकिन श्यामली के साथ उनका लहजा अलग ही था, ज्यादा कड़वा ज्यादा तीखा। क्या उन्हें भी उस पर भरोसा नहीं? अदिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर ऐसा है तो शायद वो मेरी तरफ है। लेकिन अगले ही पल एक दूसरा विचार आया, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं। उसने तकिए पर सिर टिकाया। नीचे से श्यामली के कदमों की आहट फिर सुनाई दी, धीमी नियंत्रित। अदिति की उंगलियां आपस में उलझ गईं। मुझे दादी से बात करनी चाहिए, सीधे साफ साफ। अगर दादी सच में श्यामली को पसंद नहीं करती तो वजह क्या है, और अगर वजह गंभीर है तो उसे जानना जरूरी है। कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हवेली की ऊंची दीवारें जैसे हर रास को अपने अंदर समेटे खड़ी थी। अदिति ने गहरी सांस ली। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, यहाँ रिश्तों के धागे उलझे हुए थे, और शायद उन धागों को सुलझाने की शुरुआत उसे ही करनी होगी। एक तरफ नीचे के अंधेरे गलियारे में जाती श्यामली की परछाई, दूसरी तरफ ऊपर कमरे में बैठी अदिति, जिसके मन में अब सिर्फ एक सवाल था, दादी आखिर किस बात से नफरत करती हैं, श्यामली से या उसके इरादों से।